मेरे अबू बरसों से इस घर में रहने के आती थे। यहां मेरी अम्मी की यादें हैं, मेरी बहुत सी यादें हैं। वहां वो कैसे रह पाएंगे?
शुरू में तो सख्त होगा, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद आसान हो जाएगा।
मैं बाबा को जानता हूं, आदत नहीं पड़ने वाली, वो मर जाएंगे।
हमें अभी कुछ पता नहीं कि हम कितने दिन हम दोनों साथ में रहेंगे।
इसका दारोमदार तो मशरक़ी की जहानत पर है। मशरक़ी को फराजिंदा साहब की महर से आशना होना है, कुछ चीज़ें उन्हें सीखनी है ताकि उनकी जगह ऑफिस में जाकर काम करें।
आपने ऐसा क्यों किया, हमारी जगह ले ली?
इसलिए कि आपके शोहर बहुत अहम इंसान हैं, उनका वजूद बहुत ज़रूरी है, उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है।
तुम ये रोल कैसे करने को तैयार हो गए?
वो तो इसलिए कि मैं और तुम एक दूसरे से मुशाबे हैं।
ये तो मैं खुद अपनी आंख से देख रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था, तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालने पर तैयार कैसे हो गए?
देखो दहशतगर्द मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़े जाएंगे।
अगर पकड़े ना गए तो? इंडस्ट्रियल वेंडलिज्म दरअसल मशीनों के खिलाफ एक दहशतगर्दाना कार्रवाई है। इन मशीनों के खिलाफ जो मुख्तलिफ तरीकों से हमारे लिए कुछ काम करती हैं।
तो इसका नाम हो सकता है सनत की टारगेट किलिंग।
अच्छा लफ्ज सुना है। देखो कभी तो दहशतगर्द हवाई जहाज पर हमला करते हैं और कभी इसकी परवाजों में कोई खराबी पैदा कर देते हैं। दूसरी रविश का नतीजा पहली रविश से ज्यादा तबाहकुन साबित होता है।
मुस्तफा, मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, ये तुम जानते हो। मुझसे उस नौजवान की जिंदगी की फिक्र है। इस नौजवान की जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है।
हाँ मुझे भी यही फिक्र लायक है। हम सब पर उस नौजवान की हिफाजत की जिम्मेदारी है कि नहीं?
तुम्हारे पापा हैं?
तो जवाब दो।
तूने बात करोगी?
वो अपने दामाद से बात करना चाहते हैं।
सलाम अलैकुम तोकुल साहब।
अलैकुम सलाम। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने ये फोन उठाया। गौर से सुनो, कुछ अहम बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सुन रहे हो ना?
जी
ठीक है। पहली बात, कोशिश करो कि अतिया के साथ तुम्हारा अपार्टमेंट में आना जाना बहुत कम हो। मैं नहीं चाहता कि अतिया के साथ पड़ोसी तुमको देखे। अगर कभी किसी ने देखा लिफ्ट में या किसी और जगह पर, कोई सवाल तुमसे पूछा तो कम से कम बात उनसे करना, समझ गए? आज रात के वक्त हमारे साथी तुम्हें पड़ोसियों के नाम और उनकी तस्वीरें दे देंगे। कोशिश करो कि तुम और अतिया सारे नाम और तस्वीरें जहन में बिठा लो। हर बात पूरी तरह वाजे है ना?
जी हाँ जी हाँ।
ठीक। दूसरी बात, किसी के भी टेलीफोन का जवाब नहीं दोगे सियावश। बस अगर मेरा नंबर, एहसानपुर का नंबर या बिल्डिंग नंबर 64 नंबर देखो, ایک نمبر اسد کا ہے جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ ہے، اس نے نمبر بھیج دیا نا تمہیں؟
جی ہاں، اسد کا نمبر مجھے بھیج دیا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سنو، ایک بہت ہی اہم بات تمہیں بتانا ہے. یہ سارے نمبر تمہارے ذہن میں، تمہارے اور عطیہ کے ذہن میں محفوظ ہوں، موبائل کی میموری میں نہیں. سمجھ گئے نا؟
جی ہاں.
ٹھیک ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے کام کی جگہ اور تمہارے کمرے کا ایڈریس اور نقشہ ہمارے آدمی تم کو بھیج دیں گے. کل صبح تم سیدھے جاؤ گے اپنے کمرے کے اندر، کسی سے بھی ملاقات نہیں کرو گے. یہ بات بھی واضح ہے نا؟
جی ہاں.
ٹھیک ہے.
میں نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ تمہارے آفس کا نمبر ڈائیورٹ کر دیا ہے برازند ایک موبائل کی جانب، اس طرح سمجھو کہ تم موجود بھی ہو اور نہیں بھی، تمہیں ان سارے ٹیلی فون نمبروں سے نجات مل جائے گی.
خود برازند اگر جواب دینا ہوگا تو جواب دیں گے، اگر جواب نہ دینا ہوگا تو جواب نہیں دیں گے. ہاں بس ایک بات
اور ہے، ممکن ہے کہ برازندے کبھی تم سے کہیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی سے ملاقات کرنی، یہ بات وہ خود تم سے کہیں گے، اس کا خیال رہے. خود برازندے کہیں گے اور کوئی دوسرا نہیں.
معاف کیجیے گا توکل صاحب، میں ایک پیشاور اداکار ہوں، یہ سارے کام بہت اچھی طرح انجام دے سکتا ہوں. توکل صاحب میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ رول اس طرح سے نبھاؤں گا کہ خود برازندے اپنے آفس میں آئے گا تو اسے شک ہو جائے گا.
تمہاری خود اعتمادی بہت زیادہ ہے.
کیا نہیں ہونا چاہیے؟
کیوں نہیں، مجھے تمہارا انداز پسند ہے. بس امید کرتا ہوں کہ یہی خود اعتمادی آخر تک اسی طرح باقی رہے.
جی بالکل.
عطیہ تمہارے پاس ہے؟
جی ہاں یہیں پر ہے.
فون اسے دو گے.
خدا حافظ.
السلام علیکم ابو.
علیکم السلام
ابو جان.
ہاں بیٹی سنو،
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟
ہاں ٹھیک ہوں.
رات کو آپ اکیلے گھر مت جائیں، بلکہ پھوپھی کے گھر جائیں.
ٹھیک.
ابو.
ہاں بیٹی بولو.
برازندہ صاحب اور ان کی اہلیہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری دوستی ہو گئی ہے. کیا ممکن ہے کہ وہ لوگ جہاں گئے ہیں وہاں کا ٹیلی فون نمبر دے دیجیے؟
نہیں بالکل ممکن نہیں ہے.
کیوں؟
کیوں کا جواب
مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے.
ٹھیک ہے. شب بخیر.
شب بخیر.
اس کی فوٹو ذرا دکھانا.
یہ دیکھو. یہ دیکھو.
اس کی شکل تو عجیب سی ہے.
ذرا آپ ہی بتائیں کیسی ہے ان کی شکل.
پسماندہ لوگوں کی طرح.
ڈیکاپریو تو ہمارے عاشق ہونے سے رہے، ایسے پسماندہ لوگ ہی ہمارے عاشق ہوں گے.
لیکن تم نے گاڑی میں بتایا تھا کہ یہ کئی سال استنبول میں رہا ہے.
استنبول میں رہا تو ہے لیکن اپنے طور طریقوں سے،
اپنے اخلاق و طریقے سے.
یہ اصطلاح بھی اسی کی ہے.
اچھا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہاں کے لوگوں سے کچھ نہیں سیکھا، جیسا تھا ویسے ہی رہا، اور وہ خود تو بہت ہی پرانے زمانے کا ہے، کیا بتائیں.
تو صاف کہو کہ بہت گوار قسم کا آدمی ہے.
وہ بھی ایسا ویسا گوار نہیں ہے. دیکھو آج تک اس نے نہ سگریٹ کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کوئی اور نشہ کیا ہے، نہ فیشن کرنے آتا ہے، نہ ناچنا آتا ہے، نہ میوزک جانتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. میں سمجھتی ہوں کہ میں پہلی عورت ہوں جس نے اس کی زندگی میں قدم رکھا ہے.
سچ میں؟
مجھ سے پہلے بھی مجھے لگتا ہے اس کی ماں ہوگی جو اس کے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی مر گئی.
پیسے والا تو ہے نا؟
کچھ نہیں، بالکل خالی ہاتھ ہے.
سنیے، میں نے یہ اپارٹمنٹ بیچ دیا ہے.
بیچ دیا تو میں کیا کروں؟
پوچھتی ہوں میں کیا کروں؟ اب تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر اس ماہ کے آخر تک تم نے اپنا سارا سامان نہ سمیٹا تو نئے لوگ آ کر تمہارا سامان سڑک پر ڈال دیں گے.
کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا سامان سڑک پر پھینکے. कोई भी नहीं। सुना मैंने क्या कहा?
इसी इत्मीनान में रहो, जब एक बार आओगी और देखोगी कि सारा सामान सड़क पर है तब समझ में आएगा, तब ठीक से समझोगी मेरी बात। अभी मेरी बात ना समझो, इसी इत्मीनान में रहो, मस्त रहो मस्त।
बेवकूफ तुम खुद। और
बेवकूफ, चुप रहो, चलो चलो।
रोया, मुझे भी अपने साथ ले चलो।
लेकिन देखो, इस हफ्ते के आखिर तक या अगले हफ्ते के शुरू तक मेरा काम खत्म हो जाएगा और मुझे फिर वापस जाना होगा।
ठीक है, मैं इस 48 घंटे में जो अपना सामान बेच सकती हूँ बेच दूंगी।
लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। पहले मुझे जाकर वहाँ तुम्हारे काम का कुछ बंदोबस्त करना होगा। एक दो दिन की बात तो नहीं है, कम अज कम एक दो महीना लगेगा।
वक्त लगने दो, एक दो महीने लगता है तो लगे। मैं इस एक दो महीने के लिए कोई कमरा किराए पर ले लूंगी, मेरे पास 5-6 महीने का खर्चा है। तुम 6 महीने में मेरे लिए काम तलाश कर लेना, 6 महीने कम तो नहीं।
फरूख, तुम्हारा यहाँ अपना काम है, अच्छी जिंदगी है, पैसे भी है, आराम से अपना फ्लैट बदल सकती हो तुम। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना ज्यादा जिद क्यों कर रही हो। इसी महल में कोई और अपार्टमेंट किराए पर ले लो, अपना काम भी जारी रखो। बात सुनो, देखो मैं क्या कह रही हूँ।
मुझे उसी कंपनी में नहीं ले जाना चाहती जिसमें तुम खुद काम करती हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि कंपनी के मालिक मालदार ईरानी हैं जो दूसरे ईरानियों को भी अपनी कंपनी में काम दे सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं कहा था?
तो फिर मुझे भी इसी कंपनी में काम पर रखवा दो।
थोड़ा रुक जाओ फरूख।
आखिर कब तक रुकूं? अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। तुम 2 साल से एक ही बात बोले जा रही हो, रुको रुको रुको। तुम मुझे कोई सही जवाब दो। 1 महीना 2 महीना 3 महीना कितने महीने इंतजार करूं?
ओफो, ठीक है, मैं इसी महीने के आखिर तक जब तुम्हें घर खाली करना है तुम्हारा काम करवा दूंगी। लेकिन अब उस कंपनी में तुम नहीं जा सकती जहां मैं काम करती हूं, और इसकी वजह ना पूछो तो बहुत बेहतर होगा।
सबूरी, तुम अब तक घर नहीं गई? कब मरे? हार्ट अटैक? ठीक है, बस मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं उसके बेटे को बता दूंगी। ठीक है ठीक है।
क्या हुआ?
हाशिम जावेद के अब्बू 1 घंटे पहले ओल्ड एज होम में अटैक से मर गए।
फरूख, गली के अंदर गली के आखिरी समय एक लकड़ी का दरवाजा है जिसमें 2 घंटियां लगी हुई हैं, कोई भी घंटी दबा देना।
इस वक्त हमारे झूठ पे यकीन कर लेगा?
हाँ, उसने देखा है हम लोग पागल है, यकीन कर लेगा। पागलों वाली हरकत ना कर देना इस तरह, ना हंसना हाशिम जावेद के सामने।
डर रही हो कि अपने जाले फंसा लूं?
अपना ही समझो।
तुम परेशान ना हो, मैं किसी पागल आदमी की बीवी नहीं बनूंगी।
वो पागल नहीं है फरूख, दिल का वो बहुत अच्छा आदमी है, बस थोड़ा ज्यादा सीधा है और कुछ।
मेरी जबान में ऐसे आदमी को पागल कहते हैं।
जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारी जबान। अब चलो जाओ।
कौन है?
मैं फरूख हूँ, रोया की दोस्त।
रोया को कुछ हो गया क्या?
नहीं, रोया तो गाड़ी में है। हम लोग घर में बोर हो रहे थे तो सोचा तुम्हें साथ लेकर कहीं टहलने निकलते हैं। यकीन नहीं आ तो इसे एक फोन कर लो।
तुम्हें नींद आ रही है? तुम क्यों मुझे लेने आई? घूमने का कैसा प्रोग्राम?
मुझे नींद नहीं आ रही है।
झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंख नहीं खुल रही।
बस थोड़ी थकन हो गई है।
तो कोई समझदार आदमी थक जाने के बाद घर से निकलकर सड़क पर जाता है तफरीक करने के लिए? मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, है ना?
हाशिम, तुमसे ये कहते थे, उन बेचारे को घर की बहुत आदत पड़ गई थी, उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मुझे माफ कर दो।
मेरे बाबा मर गए। यही पुल के किनारे रोक दो।
ठीक है।
रोक दो किनारे पे।
ठहर जाओ, एक मिनट ठहरो। इधर आओ।
अब आराम मिल गया बाबा, अब तो अम्मी के पास पहुंच गए। अम्मी नाराज थी, मना लीजिए, उनका दिल बहुत नर्म है, वो किसी से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। अम्मी की पेशानी चूम कर उनसे कहिएगा कि मुबारका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आपको माफ कर देंगी। जब वो माफ कर दें तो दोनों आराम से रहें, एक दूसरे से बातें करें, खूब हंसें। बाबा, जब अम्मी के पास जाएं तो उनसे कहिए कि पहले की तरह फिर मेरे लिए दुआ करें। उनसे कहिए कि आपकी दुआ की वजह से ही अब तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। अगर मेरी अम्मी नाराज हो गई और दुआ ना की तो फिर मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। बाबा,
Thank you. हेलो,
क्या मैं मोहतरमा याले मैयद से बात कर रही हूँ?
जी हाँ, फरमाइए।
मैं नाजनीन अमीरी नाहिद अमीरी की बहन बात कर रही हूँ।
नाहिद अमीरी को तो आप जानती हैं।
जी हाँ जी हाँ, फरमाइए जी।
जो बात मैं कर रही हूँ वो रमान बख्श को पता ना चले।
क्यों?
नाहिद को मदद की जरूरत है।
मैं बाद में आपको फोन करती हूँ।
डिनर में क्या खाया जाए?
नहीं मालूम। क्या है?
कबाब खाया जाए?
ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाह रहा हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो फिर कबाब ही खाया जाए।
हेलो, मुझे उम्मीद नहीं थी आप फ़ोन करेंगी।
चूँकि अभी तुमने कहा कि नाहिद को मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने फ़ोन किया।
वरना मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मोहसिन ने आकर मेरे पुराने जज्बात को बेदार कर दिया था। अब क्या कहूँ मैं? बहरहाल, मेरा कोई इरादा नहीं था कि नाहिद या बच्चों के लिए कोई मुश्किल किसी किस्म की पेश आए।
मोहतरमा, हमने इसलिए फोन नहीं किया है कि इस बारे में आपसे बात करें।
तुम कौन हो?
मैं मित्रा साकेत हूँ, नाहिद की दोस्त और कुलीग।
अच्छा।
हमने सोचा कि शायद आप हमारी कोई मदद कर सकें और हमारी समझ में आए कि नाहिद की ऐसी हालत क्यों है।
क्यों, कैसी हालत?
बताने लायक नहीं मोहतरमा, आप एक बार अस्पताल आ जाइए। ये बताइए, कल आप कितने बजे मिलने आ सकती हैं?
नहीं मालूम।
नहीं मालूम तो कोई जवाब नहीं हुआ मोहतरमा। कल सुबह, दोपहर, रात को, कितने बजे, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं है।
अभी कुछ नहीं कह सकती, अभी कुछ नहीं पता, मैं आपको कल इत्तला दूंगी।
हेलो हेलो, फोन काट दिया।
हाँ हाँ, आ जाओ। ताजुब हुआ ना?
हाँ वाकई, मैं नहीं समझता था इतनी जल्दी हो जाएगी।
तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें कौन सी बात बताना चाहती है?
जाले, छुट्टी के दिन इतनी सुबह इतनी जल्दी कहाँ जाना चाह रही हूँ?
मैं जरा हुमा से मिलके आती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
हुमा कहाँ?
वो मेरी एक दोस्त है, तुम उसे नहीं पहचानते। आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, कह रही थी बहुत घबराई हुई है, मैं मिलकर आती हूँ उससे।
तो कम से कम कुछ खा लो।
तुम सो रहे थे तभी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, वापस आकर तुम्हें पूरी बात बताती हूँ।
खुदा हाफिज। सलामुअलैकुम, नीचे आ जाइए।
जी जरूर। محسن، तुम्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं है।
अरे बस आज की रात
नहीं।
अरे आज रात तो हमारी शादी का जश्न है, बस यही एक रात है, दोबारा आने वाली नहीं है।
नहीं, तुम भी हाथ ना लगाओ।
अरे क्या है, किसी से डर रही हो? यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, ये हमारा ऑफिस भी नहीं, यहाँ बिल्कुल आराम से जो चाहे कर सकते हैं।
मैं अपने ऑफिस में भी इसी तरह रहती हूँ, मैं दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करती, ना वहाँ ना और किसी जगह पर।
लेकिन इस वक्त तुम कुछ और हो।
नहीं, मैं वही हूँ। मत पियो। नहीं।
ठीक है, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। देखो, अगर तुम भरपूर मेरा साथ दो तो अगले साल ईद के मौके पर हम लोग एक शानदार घर में होंगे, वो भी कैलिफोर्निया के अंदर।
मैं तो अब चूंकि तुम्हारी बीवी हूं, जाहिर है भरपूर तुम्हारा साथ दूंगी।
नहीं, ये साथ मियां बीवी के साथ से काफी हद तक अलग है, नहीं थोड़ा अलग है।
पहुंच गए। आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम।
माफ कीजिएगा एहसानपुर साहब, क्या मैं एक मिनट?
जी
क्या मैं आपसे तन्हाई में बात कर सकती हूँ?
ये अपने ही आदमी है, आप बात कीजिए।
मुझे जो बात आपको बतानी है उसके लिए एक तमहीद की ज़रूरत है।
तमहीद की ज़रूरत नहीं है, आप आखिर से शुरू कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि आपने रवान बख्श से शादी कर ली है, हनीमून के लिए आप लोग पेरिस गए थे, बाकी बातें बताइए।
तो इसका मतलब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं?
हाँ, हम जानते हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि आप बगैर किसी कमी वेशी की सारी बातें बताएं।
जब आपको सब पता था तो आपने मुझे इस मुश्किल में क्यों गिरने दिया?
जब आप रमा बख्श से शादी करना चाह रही थी तो क्या आपने हमसे मशवरा किया था? जब आप रमा बख्श के साथ फ्रांस जाना चाहती थी तो क्या आपने हमें खबर दी थी?
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक कमरे के अंदर बैठ कर मुझे दो इंटेलिजेंस एहलकारों से बात करनी पड़ेगी। इस वक्त मैं सिर्फ दो वजहों से यहाँ आई हूँ।
पहली वजह,
देखिए, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि इत्तला ट्रांसफर करूं, और ये भी मुमकिन नहीं कि जासूसी करूं, कुछ नहीं कर सकती। आपके भी बहुत से ऐसे काम हैं कि मुमकिन है मुझे वो बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन मैं अपने वतन से मोहब्बत करती हूं।
दूसरी वजह,
पेरिस में मुझे अंदाजा हुआ कि मोहसिन किसी खुफिया एजेंसी से वाबस्ता है।
और इससे पहले कोई बात नहीं की थी, कोई ऐसा काम नहीं किया था कि आपको शक हो?
नहीं, कभी भी नहीं।
पेरिस में आपको खुद अंदाजा हुआ या उसने बताया?
एक रात कहने लगा कि हमारे कुछ फ्रांसीसी दोस्तों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ आए हैं। कहने लगा कि चलो रेस्टोरेंट में चलकर मिलते हैं। हम लोग जाकर बैठे थे कि दो मर्द एक औरत के साथ दाखिल हुए। हमारे साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद औरत ने मोहसिन से कहा कि वो मेज से उठकर चला जाए। मेरी समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। मैं भी उठी जाने के लिए, मोहसिन ने मुझे इशारा किया कि वहीं बैठ जाऊं। फिर मुझे पता चला कि ये सब प्लानिंग के तहत हुआ था।
ये बताइए कि रवान बख्श क्या रेस्टोरेंट से बाहर चला गया था या नहीं, उसने सिर्फ मेज तब्दील की थी?
बाहर, हाँ बाहर चला गया था वो, इसलिए कि कुछ देर बाद आया तो अंदाजा हुआ कि बाहर था, वो इंतजार कर रहा था।
ठीक है, मेज की तरफ आते हैं। उन्होंने आपसे क्या मुतालबा किया?
बहुत कुछ।
क्या मतलब, क्या बहुत कुछ?
बिल्कुल साफ साफ, बगैर कुछ छुपाए हुए और बगैर किसी तमहीद के, انہوں نے کہا کہ تم اگر ہم کو اطلاع دوگی تو اس کے بدلے میں تمہیں پیسے ملیں گے، اگر تعاون نہ کیا تو پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور اس طرح سے تمہیں ایران منتقل کریں گے کہ وہاں پہنچتے ہی تمہارے خلاف کاروائی ہوگی۔
وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ یہ ساری باتیں روان بخش سنے؟
پتا نہیں۔
کس موضوع کے سلسلے میں زیادہ حساس تھے؟
ایٹمی انرجی ادارے میں میری رسائی کا تو انہیں پوری طرح سے علم تھا، وہ نام اور عہدوں کے بارے میں زیادہ اطلاعات مانگ رہے تھے۔ سب سے اہم ان کے لیے اس کمیٹی کے ارکان تھے جو صنعتی تخریب کاری پر نظر رکھتی ہے۔
آپ نے انہیں کیا اطلاع دی؟
میں سب سے اتنی حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ منہ سے ایک لفظ نہیں بول سکتی تھی، میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا، اگر کچھ بتانا بھی چاہتی تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ مجھے سوچنے کا کچھ موقع دو۔
انہوں نے مان لیا؟
ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، بتا رہی ہوں نا کہ میری حالت۔ محسن واپس میز پر آیا تو اس نے کافی کا آرڈر دے دیا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ چاہتا تھا کہ پرسکون ہو جاؤں۔
آپ ناراض ہوئیں؟
نہیں، میں نے خود کو کنٹرول کیا، اس لیے کہ اس وقت میرے ذہن میں ہزار طرح کے خیالات آ رہے تھے۔
آپ نے ان کی بات مان لی کیونکہ روان بخش کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتی تھی؟
مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میں نے مخالفت کی تو اس صورت میں کیا ہوگا، جیسے اس وقت۔ اس وقت بھی مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔
نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، آپ بے فکر ہو کر آرام سے اپنے گھر جائیں گی، ان لوگوں سے اپنا رابطہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابطہ ختم کر دیں، چاہیں تو بالکل کنارے ہٹ جائیں، آپ کو مجبور نہیں کریں گے ہم لوگ۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کنارے ہٹ جاتے ہیں تو کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی، آپ نے جو کچھ بتایا یہی کافی ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں۔
میں کنارے نہیں ہٹوں گی۔
Thank you. मोहतरमा आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने बिस्तर पर जाइए, आपसे बात कर रही हूँ मैं मोहतरमा।
नाहिद, नाहिद,
گاهی اشتباه دل بستگی قانون نداره، دست از سرم بردار و بگذرین، مرده دیگه جون نداره. گشتم دنیا از عشقم با خبر شد، من آخرین درختیم که